شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کو اپنا ٹیسٹ ریزلٹ مل چکا ہوگا اور اپنی غلطیاں بھی پتہ چل چکی ہوں گی. ٹیسٹ کافی آسان تھا لیکن پھر بھی کچھ غلطیاں اس کے اندر آپ لوگوں نے کی ہیں. تو باقی جو علم ہے وہ الگ چیز ہے، اور ایک بات کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کا جواب دینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کی بات کو سمجھ نہیں پاتا. آپ سے کوئی اگر کچھ سوال کرے یا آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے اور آپ اس علم کو اپلائی نہ کر سکے نا، تو وہ پھر نفع مند علم نہیں بن سکتا، چاہے اپنی پریکٹس کے لیے یا کوئی آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ صرف رٹی ہوئی لائنیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں اور اپلیکیشن کے وقت تو وہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس کی. وہ سمجھ نہ آئی اور ذرا بھی اگر لفظ آگے پیچھے اگر ہو گئے اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے علم ابھی پختہ نہیں ہوا. ان اینڈ آؤٹ حدیث کا پتہ ہونا چاہیے، صحیح بات پتہ ہونی چاہیے. جبکہ کہا جائے کہ معروف طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے نکالتی ہے تو تب صحیح ہے، تو اب اس کے اگر حق سے زیادہ لینے کے اوپر تو اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مطلب یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہاں حق سے بھی زیادہ لے سکتی ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں حدیث میں. تو چیز کو سمجھنا، پھر سمجھ کے اس کو کمپریہینڈ کرنا اور پھر اس کا جواب دینا، وہی لوگوں کے سب کوشچن صحیح ہوئے ہیں. ایک غلطی تک کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، چلو کوئی چیز میں کنفیوژن ہو گئی، لیکن ایک سے زیادہ غلطیاں، اتنا مشکل تو پیپر نہیں تھا جس میں ایک سے بھی زیادہ غلطیاں ہوں. ایک سے زیادہ غلطیوں والے جو لوگ ہیں، چلو دو غلطی کی بھی میں گنجائش دے سکتی ہوں مگر اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ جن کی بھی غلطیاں ہیں، دو سے زیادہ، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، یہی میں کہوں گی. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تیاری کی تھی اور بس یہ غلط ہو گیا اور وہ نہیں ہو گیا، علم پختہ نہیں تھا، آپ کی صحیح تیاری نہیں تھی، پھر جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے کم ہے، پھر نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے، دو سے زیادہ غلطیوں کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. کئی تو اتنے ایزی کوسچن تھے کہ میں سوچتی تھی اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا ہوگا تو یہ آپ کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کے بس وہی صحیح ہوئے. تو اس لیے پلیز آپ لوگوں کی جن کی بھی دو سے زیادہ غلطیاں ہیں، نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ محنت کریں گے، کیونکہ یہ بہت ایزی چیپٹرز تھے، ان میں کوئی مشکل نہیں تھی بات. اس کے باوجود یہ سب ہونا، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں کمی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آج کا ریویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا حدیث نمبر 1127 1128 یہ جو حدیث ہیں کتاب القطع کے اینڈ میں آخری احادیث ہے مہمان نوازی کا بیان، اس میں آپ نے اچھی طرح یہ احادیث پڑھ لی ہیں. یہی ہیں احادیث جو اوتھینٹک ہیں، اس کے علاوہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں کہ کوئی کدھر سے اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں خود سے کہ بھئی کوئی عورت بہت زیادہ جو ہے وہ کرتی تھی مہمان نوازی کے اوپر، بہت منہ بناتی تھی، تو پھر اس کے شوہر بہت مہمان لے آتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے گئے اور جب جانے لگے تو ان کے پیچھے سارے اس نے دیکھا کہ بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاندار جو بچھو سانپ یہ جا رہے ہیں اور وہ بلائیں گھر سے چلی جاتی ہیں. تب آپ دیکھیں نہ اس حدیث کا کوئی ریفرنس ہے، اس کے باوجود میں جہاں پہ بھی ہوں، واٹس ایپ پہ، وائبر پہ، جدھر بھی، ہر گروپ میں یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، ہر گروپ میں. یعنی کوئی آگے سے آگے پہنچانے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ تو دیکھ لیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، کسی سے پوچھ ہی لیں، اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کا کریں. ایک ایسی چیز جو نہ کبھی کہیں ہے، نہ کہیں بیان ہوئی کسی حدیث کی کتاب میں، کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ اس کو اس طرح پھیلایا گیا ہے. یہ ایک جھوٹ کا پھیلانا ہے، جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں نا کوئی اچھا نہیں وہ تو فیبریکیٹڈ حدیث تھی، تو یہ ये अगर कोई जानबूझ के करता है, तो जिसने जानबूझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई झूठी बात लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। ठीक है, और जो अनजाने में कर रहा है तो देखें पहले खुद सोच लें, तहकीक कर लें। झूठ को फैलाना, आगे से आगे फैलाते जाना, ये समझ लें आप झूठ में एक हिस्सा डाल रहे हैं। वो झूठ जहां तक फैलेगा आपको उसका गुनाह जा रहा है, झूठ तो है ना फिर भी। तो इसलिए काइंडली ऐसी चीजों को फैलाने से पहले जरूर सोचना चाहिए, और कोई फैला रहा हो तो उससे जरूर क्वेश्चन कर लिया करें। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह ताला आज का सबक शुरू करते हैं। हमने रिव्यू यहाँ तक कौन सी हदीस तक कर लिया था, हमने नंबर बताएंगे ये आई थिंक 1147 तो हमने कर ली थी ना, अलिफ है और ये सब कर लिया था। अच्छा 50 भी कर ली थी। अच्छा ठीक है इंशाअल्लाह ताला, जी बिल्कुल हमने ये भी कर ली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास कैसे आगे से आगे बांटी गई है, और कैसे वो तकसीम होगी, और इसमें उस तरह से विरासत नहीं होगी जैसे कि हमारी आम उम्मतियों की विरासत के अहकामात हैं, और हमारे बच्चों को हमारे रिश्तेदारों को जैसे मिलती है उस तरह से तकसीम नहीं होगी। तो क्या उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, उनके नाम पे तो नहीं हो जाएगी, मगर उनको उससे खर्च मिलता रहेगा, और ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के फर्द के नाम पे हो जाए। जैसे हमारे हमें दे दी जाती है, हमें फुल अथॉरिटी होती है, हम बेचें उसको, रखें उसको, जो भी करें, जो भी तसरुफ उसमें करें, हमें अथॉरिटी होती, वो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी आगे से शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी इशरत, आप बताएंगी कि कैदी के बारे में हमारे दीन में क्या अहकामात हैं? जी कैदी के बारे में हमारा दीन क्या अहकामात देता है कैदी के बारे में?
कैदी को ये दीन में है कि आप फिदिया लेके उसको छोड़ सकते हैं, और मतलब उसको ऑप्शन देते हैं दीन का, इस्लाम कबूल करने का, और फिर अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करा तो फिर उसको मतलब अच्छे ट्रीट करें, और फिर वो अगर माल देकर छूटना चाहे तो ये उनका समामा बिन असाल का है कि उनको मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया गया था 3 दिन फिर रसूल अकरम के घर।
वो नहीं, आप समामा की नहीं बात बताएं, आप मुझे बताएं कि कैदी कोई भी कैदी हो, काफिर कैदी है या मुसलमान कैदी है, या क्या कैदियों के बारे में क्या अहकामात हैं इस्लाम के, क्या सलूक, क्या उनके साथ तरीका
का? उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाए, उनको अगर काफिर है तो दीन का ऑप्शन दिया जाए, नहीं तो फिर उनसे फिदिया लेके उन्हें छोड़ दिया जाए।
अच्छा, और अगर फिदिया ना दे वो तो
उनको फिर भी आई मीन छोड़ दिया जाए।
अच्छा, वैसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर वो क्यों फिदिया देंगे अगर वैसे ही हर एक को छोड़ दिया जाएगा? फिर वो तो फिदिया देने की बात ही नहीं है ना, फिर तो कोई भी नहीं कहे फिदिया देगा अगर इस तरह से सभी को छोड़ दिया जाए। अच्छा चलिए, अब आप सुनिएगा, लेकिन कैदी के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि उनके साथ सलूक अच्छा किया जाए, उनको इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, इस्लाम इसीलिए यहाँ पे मस्जिद नबी के सतून से इनको बांधा गया था ताकि वो इस्लाम के शायर को देखें, लोगों की मुसलमानों की इबादत को देखें, मुसलमानों के तरीके को देखें, उनकी तालीम को देखें, वो सब कुछ उन्होंने विटनेस किया वहां पे, देखा वहां पे, और इसी से मुतासिर होकर उनका ये हाल हुआ था कि उन्होंने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पर मुझे सबसे ज्यादा बुरे लगते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा महबूब हो गए। तो इसी से अंदाजा कीजिए कि जब इस्लाम किसी के दिल में आ जाता है, ईमान आ जाता है, तो फिर कैसे उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो हमें पता चला कि कैदियों तक भी दीन इस्लाम को पहुंचाना ये भी सुन्नत है, और यहाँ पे भी आज जो जेलों में जाके काम किया जाता है ये भी एक बहुत बड़ा नेकी का काम है कि वहां जाके लोगों को दीन की तबलीग की जाए। जो मुसलमान भी अगर हैं तो उनको भी दीन का, जाहिर है कोई उनको पता तो नहीं इतना होता, वरना वो इस हाल को ना पहुंचते, तो उनको दीन सिखाया जाए, समझाया जाए, दीन की तरफ बुलाया जाए, ये चीजें करना एक ऐन सुन्नत का काम है। ठीक है, अब जहां तक ये छोड़ने की बात आई है, तो ऑप्शन है, ये नहीं है कि फिदिया लें, अगर नहीं भी फिदिया दिया तो फिर आप छोड़ दें, नहीं, ऑप्शन है कि चाहे तो हुक्मरान मुनासिब समझे, एहसान के तौर पे उनको छोड़ दे, और अगर नहीं मुनासिब समझे तो फिर उनको भले कैद किए रखें, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के लिए भी और इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मस्जिद से मुतालिक भी पता चला। अच्छा, मस्जिद के लिए ये जो हमारी बहुत ज़्यादा ये बात होती रहती है कि मस्जिद के लिए क्या आदाब हैं, कि क्या मस्जिद के अंदर, नसरीन आप बताएंगे कि क्या मस्जिद में किसी गैर मुस्लिम को आने की इजाज़त है। हम बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं, पुलिस वाले अंदर आ गए मस्जिद में, फलां आ गए, ये आपको लाया गया। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी, ये है कि इस्लाम में जो है ना, मस्जिद में तालीम के लिए गैर मुस्लिम आ सकते हैं, वो सीखने के लिए, जैसे कैदी को भी इसलिए बांधा गया था कि वो कुछ दे के मुसलमानों का उसने सलूक या कुरान सुने तो उसके असर हो ना।
जी ठीक है,
और इसलिए दावा किया, कुछ दावा सेशन होते हैं इस्लाम में, क्रिश्चियन वगैरह को बुलाया जाता है, तो इस पर्पज के लिए गैर मुस्लिम आ सकते हैं।
ठीक है, शाबाश। हानी यानी हमारे बाज दफा बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर करते हैं, जी देखो ये गैर मुस्लिम है, इनको लाके मस्जिद में बिठाया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर मुस्लिम यानी कुफार मस्जिद के अंदर आ जाते थे, मगर उसकी कोई, उसका कोई मकसद होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि घूमने के लिए चल पड़े और मस्जिद देख रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि अंदर भी कोई दीन की तबलीग हो, या चलो इस्लाम की एक शान दिखानी हो कि कोई इस्लाम से मुतासिर हो, उसका पर्पस हो, या कुछ ऐसा पर्पस होना चाहिए कि जो इस्लाम का ही, जिसमें कोई कोई इस्लाम की तरफ उसको मायल करने की चीज हो। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गए हैं, इस तरह से आ गए, जब वो फ्यूनरल के लिए भी आएंगे तब भी मुसलमानों का इज्तमा देखेंगे, तब भी मुसलमानों का एक तरीका देखेंगे, तब भी उनके लिए तालीम हो गई ना। ठीक है, ये भी एक तालीम का तरीका है कि किस तरह से मुसलमान अपने ये चीजें करते हैं, कैसे अपने लोगों को दफनाते हैं, क्या इनका तरीका, देखो किस तरह से ये उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, कैसे उनके लिए दुआ करते हैं, और कितनी रिस्पेक्टेबली ये एक मैयत के साथ मामला करते हैं, वो सारा उनको विटनेस करने का जरिया बनता है, और फिर वहां आएंगे, कोई ना कोई बात उनके कान में पड़ेगी, कोई ना कोई चीज वो देखेंगे जिससे वो मुतासिर हो सकते हैं। तो बाज दफा अब हमारे यहाँ जुमे के टाइम के ऊपर कोई बाज लोगों को बुलाया जाता है, वो पीछे बैठते हैं, जुमे का खुतबा सुनते हैं, बाज दफा पॉलिटिशियंस को बुला लिया जाता है इस तरह से, तो उनको मस्जिद की रिस्पेक्ट बता के उनको बुलाया जा सकता है। बाज दफा ऐसे भी किसी ने पूछा था कि मैं आना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ आप लोगों की किस तरह से नमाज होती, कैसे ये थे? मैंने कहा जरूर आप आए, जरूर देखें, वो कोई सिख थी, तो ये चीजें देखें उनको, और तरीका कोई किस तरह से आप बताएंगे, कैसे मुसलमानों का इज्तिमा है, कैसे उनकी नमाज है, कैसे ये चीज वो मस्जिद में बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गैर मुस्लिम अगर इस नजरिए से उनको लाया जा सकता है, मगर वो कोई पार्क नहीं समझें कि ये कोई पार्क है, जैसे दूसरे म्यूजियम्स में जा रहे हैं, इस तरह एक मस्जिद का भी टूर कर गया, और इस तरह जैसे हमारे यहाँ बादशाही मस्जिद है, ये है, तो वहां पे लोग किस लिए जाते हैं, मस्जिद देखने जा रहे हैं, उसका आर्किटेक्चर देखने जा रहे हैं, लेकिन मस्जिद को, मस्जिद का एक दर्जा देना चाहिए, उसे इस्लाम की जो है ना एक कुर्बत और उसकी ये चीज दिल के अंदर आनी चाहिए, ना कि बस ऐसे ही सैर व तफरी की जगह बना ले, पिकनिक पॉइंट बना ले। ठीक है जी, इफ्तार में भी वो आके यही चीज विटनेस करते हैं ना कि मुसलमानों के क्या तरीके हैं। अच्छा जी, यास्मीन इकबाल आप बताएंगे, सुमामा बिन असाल कौन थे?
ये आपके ये सरदार थे, बनू हनीफा थे।
हाँ, बनू हनीफा के
सरदार जो हो क्या है कि अभी ये सीरत में भी इंशाल्लाह ये सवाल आएगा।
जी,
जब ये आए थे कैदी बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन सवाल कंटिन्यूअसली पूछे थे, और इनको मस्जिद नबी के सामने बांधा हुआ था।
जी,
फिर जो आपने अभी बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन चेहरा फिर कोई नहीं था।
जी, इससे आपको क्या बात समझ में आती है कि जब उन्होंने फरमाया कि इनसे ज्यादा बेहतरीन चेहरा कोई नहीं, उससे पहले फरमाया कि इनसे ज्यादा मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, क्या समझ आती है? ये जो बिल्कुल एक यानी जमीन आसमान का फर्क हो गया, ये बिल्कुल एक चेंज आई है, इसे क्या समझ आता है?
जब रसूल साहब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जब ये सवाल किया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ इस कदर बेहतरीन इखलाक था कि उनके घर से खाना तक उनके घर से पक्के उनके लिए जाता था, और भी सहाबी जो वो खुद जो चाहे अच्छा खाए ना था उनको अच्छा बेहतरीन खाते थे, और वो इस सब अपनी आंखों से देख रहे थे कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका क्या सलूक है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी क्या साथ, उनका बेहतरीन इखलाक था
जी,
इसकी वजह से वो बहुत
मुतासिर हुए। इससे हमें पता चलता है कि अखलाक ही है जिससे हम दिलों को जीत के अपने दीन का मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमारे पास अखलाक नहीं और हम ये सोचते हैं ना कि अगर कोई मुसलमान होगा तो हम उसके साथ अच्छा अखलाक करेंगे, अगर कोई काफिर है तो हम उसके साथ बुरा अखलाक करेंगे, तो आप उसको इस्लाम की तरफ तो नहीं ला सकते, ये मैं बता दूं। ठीक है, हमारे दिमाग में ये होता है ना कि भाई मुसलमानों के साथ तो हमने अच्छा करना है और काफिर जो है इनके साथ बस नफरत का रवैया रखना है और इनके साथ बुरा करना है, लेकिन आप यहाँ पे देखें अखलाक ही से सुमामा का दिल जीता गया, और इससे हमें एक और बात बहुत जबरदस्त पता चलती है कि देखिए कुफर से नफरत करनी है, इंसान से नफरत नहीं करनी। इंसान बदल सकता है, अभी इंसान क्या है कि उसके दिल में नफरत है और दूसरी तरफ बदलने लगता है तो ऐसा बदलता है कि उसी चीज की मोहब्बत दिल में सबसे ज्यादा आ जाती है, तो इंसान बदल जाया करते हैं, उनको बदलने के लिए गुंजाइश दीजिए, उनको वक्त दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको अपने आप को देखने तो दें, उनको मैसेज पहुंचने तो दें। हम मैसेज पहुंचने से पहले ही नफरतों का से जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर वो कैसे इधर को आएगा। इसीलिए अगर कुफर से नफरत होगी तो कुफर निकल गया, इंसान तो पहले भी प्यारा था और बाद में भी प्यारा, ठीक है, तो कुफर से नफरत करनी है, इंसान से नहीं करनी। जब भी सहाबा कराम उनको खिला भी सके, पिला भी सके, उनके साथ अच्छा भी सलूक कर सके, क्योंकि वो कुफर से नफरत करते थे, इंसानों से नफरत नहीं करते थे। हमारा आज प्रॉब्लम यह है कि कुफर से तो उतनी नफरत नहीं, इंसान से बहुत ज्यादा नफरत है, देखते ही उनको हमारे दिल से जो नफरत अगर निकलने लगती है तो क्या मैसेज है हमारा मिल रहा, देखते ही हम नाम नाक में चढ़ाए, देखते ही हम उनको से मतलब एक हमें एलर्जी सी हो जाए, तो फिर क्या हमारा उनके साथ रवैया रख सकते हम अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आपको इस चीज की समझ आ गई, और आप ये देख रहे हैं कि अहदीस पढ़ते वक्त आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है कि आपने सीरत पढ़ी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फौरन फौरन आपको समझ में भी आ रही है और जहन में फौरन याद आ जाता है, अच्छा ये वो वाक्या था, ये वो वाक्या था, और ये कब का वाक्या था, ये भी जहन में आ जाता है ना, तो कितनी आसानी हो गई है। और सीरत पढ़ने से भी ज्यादा सीरत के टेस्ट देने से मेरे ख्याल ज्यादा आसानी हुई है, क्या ख्याल है आप लोगों का ना, कि टेस्ट देने से तो बहुत ज्यादा आसानी हुई है, वरना ये तो पढ़ी भी होती तो तब भी भूल चुकी होती, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। टेस्टों को बुरा ना समझा करें, को हो सकता है तुम किसी चीज को बुरा समझो लेकिन वही तुम्हारे लिए उसमें बेहतरी हो, ठीक है, तो टेस्ट इज ऑल्सो लाइक दैट कि जिसको आप बुरा समझते हैं लेकिन उसमें आपके लिए बहुत बेहतरी। तो जब भी मैं अहदीस को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होंगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन था सुमामा बिन असाल से, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे भी जो यहूद के कबाइल का था, आप अगर सीरत पढ़े बगैर आपने ये पढ़ा होता तो यकीन करें कि इंसान कंफ्यूज ही रहता है, वो कौन से बनू कैन का, अच्छा कुरैजा, अच्छा उनके साथ वो कंफ्यूज हो रही है, वो भी काफ से है, वो भी काफ से, अच्छा कौन सा कबीला कैसे निकला था, पढ़ तो तब भी आप लेते लेकिन कोई पिक्चर जहन में ना बनती। अब ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसकी बेस पे आप ये पढ़ रहे हैं तो अब आपको अच्छी तरह समझ आए यहूद को कैसे निकाला गया, कब निकाला गया, कोई ज्यादा नहीं भी बताए, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के खुद भी हदीस समझ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया सीरत का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी शहनाज शाह, आप बताएंगी कि ये जो हदीस नंबर 1153 है ये किस मौके की हदीस है, किस वक्त का बताएं?
वालेकुम अस्सलाम,
वालेकुम अस्सलाम अल्लाह का बरकात।
जी यहाँ पे जो यहूद को निकाला जा रहा था बनु कैनका की है।
जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल सही है, बनु कैनका को जब निकाला गया था तो उस वक्त की उनकी जिलावतनी की बात है। और हिजाज का इलाका कौन कौन सा है?
हिजाज इसमें मक्का मदीना जद्दा ताइफ ये सारे इलाके आते हैं
और अलावा भी कुछ आगे तक के भी इलाके हैं। शाबाश, ठीक है
जी।
शकीला आंटी, आप बताएंगी कि ये जो यहूद थे पूरे हिजाज से कब निकले थे, कब इनको पूरे हिजाज से ही निकाल दिया गया था? नहीं, पहले तो मदीना से ही निकले ना, फिर आगे पूरे हिजाज से निकल गए थे, ये कब हुआ था?
इन्होंने
बदायदी की थी तब तो मदीना से निकले थे। अच्छा, अब आप सुनिएगा जी। जी जाहिदा बेजाद जी, आप बताइए।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी
तैयारी तो मेरी बिल्कुल नहीं हुई, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब आपने आखिरी हज किया था और आपने फरमाया था कि आपके बाद कोई भी मुशरिक है इधर मक्का और मदीना में ना रहे।
ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ तक तो सही बताया, मगर हमने जैसे अभी पढ़ा है कि हिजाज जो है वो सारा मक्का मदीना ताइफ जद्दा जद्दा तक चला जाता है। आपको पता है जद्दा तो काफी दूर है, तो ये काफी दूर दूर तक का ये एरिया सारा कवर होता है। राफिया बेगम, आप बताएंगी ये कब हुआ था कि ये जब सारे ही यहूद को ही पूरे हिजाज से निकाल दिया गया था? जी राफिया, आवाज नहीं आ
रहा।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी
जी आपने क्या कहा था, सॉरी।
अच्छा, अब आप सुनिएगा, मैं आपसे अगला क्वेश्चन करती हूँ। जी राहत, आप बताइए। जी राहत, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, कि पूरे हिजाज से यहूद
के इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन वही मैं बात करूंगी कि जब आखिरी खुतबा दिया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी थी पूरी कौम को कि इस्लाम ले आओ, यहूद को, तो जो नहीं इस्लाम लाएंगे तो उनकी जमीन जो उधर की है उनको जलावतन कर देना, उनको जमीन में से जैसे हमने सीरा में पढ़ा था हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान नहीं लाए तो जलावतन कर दिया जाएगा। वो जहां तक उनको हुक्म था कि वो अपनी जमीन भी उधर नहीं बेच सकते।
ओके, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। जी राशिदा कालिया, आप बताएंगी कि हिजाज से कब पूरे हिजाज से यहूद का बिल्कुल खात्मा हो गया था?
अस्सलाम वालेकुम, मुझे पूछा गया है।
जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी, ये जंगे खंदक के बाद जब बनू कुरैज़ा का फैसला हुआ तो पूरी हिजाज से यहूदियों को निकाल दिया गया ना?
जी नहीं। जी शाहदी, आप बताएंगी, आपका तो नहीं नंबर आ रहा। जी सबात, आप बताएंगे। अच्छा, अब आपकी, हाँ जी, कम्यूट हुआ हुआ था। जी जज़ाकअल्लाह खैरा कसीरा। जी हजरत उमर के दौर में फिर ये सारे इलाके से, यानी हिजाज बहुत बड़े इलाके का है कि ये मतलब रकबा कवर होता है। जज़ाकअल्लाह खैरन शहादी। तो यहाँ से उस वक्त निकाला गया था जिस वक्त हजरत उमर का दौर आया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने इसी में लुलू अल मरजान में पहले पढ़ा हुआ है कि सारे हिजाज से निकाल दिया गया था। फिर इनको अगर ये आज भी मौजूद होते तो इन्होंने कोई ना कोई शरारतें करते ही रहना था, कुछ मसला निकालते ही रहना था। अच्छा जी, अब तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से करती हूँ। जी राफिया, आप बताएंगी कि हर कबीले का मुझे बताएं कि किस कबीले के साथ क्या सलूक किया गया।
जी
यहूद के तीनों कबाइल का,
जी बनू नजीर और बनू खरेजा, एक कबीला था, इनको भी जिलावतन नहीं किया गया था। और
बनू नजीर को और बनू कुरैजा को
नहीं, बनो पहले तो सॉरी सजा मैं थोड़ा सा बता नहीं सकती, लेकिन
यानी कोशिश करें आप, पहले किस कबीले को निकाला था? कोशिश करें, अच्छा चलिए, अब आप सुनिएगा फिर इंशाल्लाह इसको, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? जी नाहिद सिद्दीकी, आप बताएंगी।
वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
पहले बनू कैनका को निकाला गया था
जी,
उसके बाद से बनू नदी को निकाला गया था, और सत्र पे बनू खरीजा को निकाला गया था, और बनू खरीजा को निकाला ही था बल्कि उनको मर्दों को कतल कर दिया गया था, फिर सात दिन बाद निकाल था कि मर्दों को कतल कर दे और तो बच्चों को गुलाम बना लिया।
तो क्यों उनके साथ क्यों ये ऐसा सलूक किया गया था?
ठीक है, उन्होंने मुआवजा तोड़ा था, उन्होंने आपस में इनका मुआवजा था, जब रसूलुल्लाह सब जंगे खंदक के लिए गए थे पीछे से इन्होंने मुआवजा तोड़ा था, और उन्हें बड़ी फिकर थी पीछे बच्चे और बुढ़े लोग घर छोड़ के गए थे, उनको बड़ी फिकर थी पीछे से, साथ उन्होंने धोखा दिया था
शाबाश, ठीक है शाबाश। आप ये देखें कि बनू कुरैज़ा के साथ अगर किसी को ये एतराज़ होता ना कि ये सलूक क्यों किया गया, तो ये भी समझने की जरूरत है कि उनका जुर्म सबसे ज्यादा संगीन था, सबसे ज्यादा बड़ा था जुर्म उनका। चलो बनू का इनका में भी बड़ी बुरी बुरी बातें कही थी और ऐसे कहा था, और वो औरत का जो वाक्य आपको पता है सारा, जो बाजार में उनके हुआ था, अभी बनू नजीर ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश थी, तो वो भी काफी बड़ा जुर्म था, लेकिन बनू कुरैज़ा ने तो पूरे मुसलमानों को एक में डाल दिया था कि अगर कुफार आ जाते तो ये बस्ती ना बचती, यानी उन्होंने तो सब के लिए एक सोच लेना, आपके कोई खिलाफ कोई चीज कर रहा हो और आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके साथ हर वक्त, जिसका आपके साथ एक यानी दोस्ती का एक खामोश अहद है, वो जाके उनके साथ मिल जाती है, तो आप कहते हैं वो तो मेरी दुश्मन है, सबसे तो गुस्सा मुझे इसके ऊपर है कि जो मेरी दोस्त हो के वो जाके वहां मिली है, तो उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है ना। इनके साथ मीसाक है, इनके साथ मुआहदा, और उनसे बार बार पूछा जाता था आप अपने मुआहदे को रखना है कि नहीं रखना, पहले भी इनको एक दफा एक्सक्यूज किया गया था, तो इसलिए इनका कसूर बड़ा था बाकियों से। और आप ये नोट कीजिए 1153 हदीस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कौम यहूद को भी यानी इस्लाम लाने के लिए दावत देते रहे, फिर उसके बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी मामला करते थे, पहले उनको इस्लाम की दावत दिया करते थे। नहीं, इस पॉइंट पे भी आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना बंद नहीं की थी, ठीक है? अच्छा जी, और कौन है? अच्छा ये मुझे बताएंगे, इरम आप बताएंगी कि साद बिन मुआज किस कबीले के सरदार थे और उन्होंने क्यों शहादत की ख्वाहिश जाहिर की?
अस्सलाम
वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
जी सॉरी, आवाज कटी, आप रिपीट करेंगे?
साद बिन मुआज जो थे वो किस कबीले के सरदार थे, उनको क्यों यहूद ने कहा कि ये हमारा फैसला करेंगे, और क्यों उन्होंने शहादत की अपनी दुआ की थी? कि
ये तो साद बिन मुआज जो थे उन्होंने, आप कह रही किस कबीले से थे, और दूसरा सवाल आपने किया कि
पहले आप बताइए किस कबीले के सरदार थे। जी किस कबीले के सरदार थे ये? अच्छा चलिए, अब आप सुनिएगा फिर इंशाल्लाह ताला। अमरीन मंसूर आप बताएं।
और इन्होंने इसके क्योंकि और सहलीफ थे इनके साथ बनू कुरैज़ा के साथ, तो उनको उनकी तो उनको बहुत उम्मीद थी बनू कुरैज़ा को कि ये हमारी साइड लेके, इसलिए उनकी इन्होंने कहा कि वो उनका फैसला कर दे।
तो उन्होंने शहादत की क्यों ख्वाहिश की थी?
शहादत की इसलिए क्योंकि खंदक में
सही
खंदक में वो जख्मी हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने ना मतलब शहीद हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस वक्त तक नहीं मतलब मेरी जान के जब तक मैं ना इनका इनका ना देख लूं,
सही
जो एंड गुरु को रहता था
सही। सही, ठीक है शाबाश। अच्छा ये देखें कि बाकी सारा सही है, सिर्फ थोड़ा सा और ये बता दूं, शहादत इतना बुलंद मर्तबा है कि उन्होंने शहादत की ख्वाहिश की लेकिन साथ ये फरमाया कि अल्लाह अगर लड़ाई के लिए को तूने खत्म कर दिया है तो फिर मेरी मुझे शहादत अता फरमा। जाहिर है शहादत इतना बड़ा एक दर्जा है, उसकी हर एक मुजाहिद को ख्वाहिश होती है। तो अब के यानी इसके बाद कोई भी ऐसी लड़ाइयां वगैरह का नहीं है सिलसिला, तो मुझे ये मौत अता फरमा। या तो वो फिर उनका खून जो दोबारा शुरू हो गया था उनके जख्म से और इसी में उनकी शहादत हुई थी। ठीक है, हाँ जी जी, मुश्रिकीन एंड देन कुरैजा का, और उनको देखना था यानी क्या मतलब जी, मुश्रिकीन हाँ कुरैजा का एंड उनको देखना था, लेकिन ख्वाहिश उन्होंने क्यों जाहिर की थी कि अब इसके बाद कोई ऐसी ऐसा लड़ाइयां नहीं रह जाएंगी। इसके बाद तो आपको पता है ना, मक्का ही फतह हुआ था, खैबर की हुई थी, लेकिन उसके बाद तो ऐसा कुछ ऐसी जंग नहीं हुई कहीं जैसे पहले मुशरिकों के साथ जंगें होती थी इस तरह की, कोई ऐसी कोई खास ये आगे आप पढ़ेंगे उन्हें इनका पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, मगर ऐसा नहीं था जैसे कि पहली जंगे हुआ करती थी ना। क्या इस्लाम को बेसिकली गलबा मिल गया था ना इसके बाद, तो खंदक के बाद इस्लाम गालिब आ गया था, क्योंकि सुलह हुदैबिया इसके बाद हुई, उसके बाद तो कोई ऐसा खास आपने देखा इस तरह से नहीं रहा था जी। अच्छा जी कुलसुम, आप बताएंगी कि इस हदीस से आपने क्या समझा है कि जब दो काम सामने हों तो फिर उनके अंदर से किसको पहले करना चाहिए। जी कुलसुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी।
हाँ जी, ये वही वाली हदीस है जिसके जिसका मैं आपसे पूछ रही थी कि मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने बाद में पढ़ी मुझे मुझे समझ आई है, मैं आपको बता
वो बताएं जरूर ताकि मुझे पता चले।
सलम ने कहा था
मुझे पता चलना चाहिए आपने सही समझा है या नहीं समझा, तो आप वो बताएं जो आपको समझ में आया।
मुझे ये समझ आई कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना था वहां पर, जब वो जिब्राइल आए थे तो कहा था कि आपने हथियार उतार दिया, अभी तो वहां पर चलना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब ऐलान किया था कि जाने के लिए, तो कहा था कि हम वहां पर असर की नमाज जाके पढ़ेंगे, तो कुछ सहाबा ने पढ़ लिया और कुछ ने नहीं पढ़ी वहां पर। तो इसमें ये समझ आई कि जैसे कहने का मकसद ये था कि जल्दी हम निकलेंगे ताकि हम वहां पर जाके असर की नमाज पढ़ें, तो कुछ ने पढ़ी कुछ ने नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें दो जरूरी काम आ जाए कि एक तो यही था कि यानी जंग के लिए वहां जो निकलना जरूरी था, दूसरा नमाज का था, तो अब मुझे तो यही समझ आई है।
अच्छा नाज़नीन, आप भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी। जज़ाकअल्लाह खैरन कुलसुम, फिर मैं अभी आप लोगों को और समझाती हूँ।
एक हदीस से ये समझ आती है कि एक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज कही उसको अलग तरह से दो मतलब दो ग्रुप्स में या जो भी सहाबा से उन्होंने अलग तरह समझा, तो ये इसी का है कि जो आपको मतलब अगर सही कोई क्लियर बात है तो उसको ले ले, और अगर कोई चीज ऐसी है कि जो सिर्फ मफहूम समझ आ रहा है तो उसको कर ले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिन्होंने वहां जाके पढ़ी वो भी सही कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और जिन्होंने रास्ते में पढ़ी उनके लिए भी सही कहा।
शाबाश,
दो चीजों में से कुछ भी क्लियर हो तो कर ले।
शाबाश, सही, बिल्कुल सही आपने बताया। यानी यहाँ से पता चलता है, देखें दो चीजें थी, एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, ठीक है कि भाई वहां बनू कुरैजा के मोहल्ले में जाकर पढ़नी है, रास्ते में अब असर की नमाज तो अजान तो हो गई है। अब कुछ का ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मकसद ये नहीं था कि भाई वहीं जाके पढ़नी है, बल्कि ये था कि जल्दी जल्दी जाओ और वहां पहुंचो, ये जल्दी करने का मकसद था। ये नहीं मकसद था कि भाई नमाज ही नहीं पढ़नी तुमने वहां पर, बल्कि कहने का उनका मकसद ये था। तो यानी एक ने लिया कि कहने का उनका मकसद ये था, दूसरे ने सिर्फ वर्ड्स लिए, उन्होंने कहा नहीं बस उन्होंने कह दिया कि वहां जाकर पढ़नी है तो बस वहीं जाकर पढ़नी है। अब चाहे ये फर्ज है ना नमाज असर, ये फर्ज है चाहे ये कजा हो जाए, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं छोड़ेंगे, हमने पढ़नी वहीं जाके। ठीक है, कुछ ने नहीं पढ़ी कुछ ने पढ़ ली, تو دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ملامت نہیں کیا, کوئی ان کی غلطی نہیں نکالی کہ میرا تو مطلب یہ تھا تو تم نے ایسے میرے ورڈنگز کیوں لے لیے, اور دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہیں مقصد نکالنے کی کیا ضرورت ہے, خود سے تو میرے ورڈز پہ جاتے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب اس طرح سے ہو کہ کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا آئے کہ اس کے اندر سے واضح طور پہ پتا چل رہا ہے, اگر بہت واضح طور پہ پتا چل رہا ہے, اور یہ نہیں کہ خود ہی ہم مقصد نکالنے شروع کر دیں, نہیں آپ کا تو مقصد یہ تھا, آپ کا تو کہنے کا مفہوم یہ تھا, تو یہ نہیں ہے, بلکہ ہم اس میں واضح طور پہ نکال. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتی ہوں کہ جی لٹرل اور فگریٹو سینس آپ کی بات صحیح ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر دشوار نہ ہوتا تو میں کہتا ہر نماز سے پہلے مسواک کریں, تو ایک کوئی کہہ سکتا ہے یہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ بھائی دانت صاف کرنے, اب دانت ہی صاف کرنے ہیں نا, مسواک کی کیا بات ہے, کوئی اس زمانے میں مسواک ہوتی تھی, آج کے زمانے میں ٹوتھ برش ہے. دوسرا کہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ مسواک ہے تو مسواک ہی کرنی ہے. اب اس میں ہم خود سے مقصد نہیں نکال سکتے کہ نہیں نہیں وہ تو ان کا یہ مقصد تھا اور یہ تو مقصد صرف دانت صاف کرنے ہی ہے نا. مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ وہ دوسری چیزوں سے نہیں پورے ہو سکتے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو اس کے الفاظ میں لے لینا وہ ضروری ہے, جب تک کہ ہمیں مقصد بالکل عین سامنے واضح نہ ہو. اگر مقصد واقعی واضح ہو رہا ہے تو پھر ہاں ہم دونوں چیزوں کو لے سکتے ہیں, الفاظ کو بھی اور معنی کو بھی, یعنی مقصد کو بھی, دونوں میں سے کوئی حرج نہیں. لیکن مقصد خود سے ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. میں آپ کو کہنا شروع کر دوں مقصد تو یہ ہے نا, آپ سر نے بھی ایک ایگزامپل جیسے دی تھی کہ مردوں کے ٹخنے جو ننگے کرنے کا ہے, تو وہ کہیں کہ بھئی اس زمانے میں تو تکبر کی وجہ سے کہا گیا تھا, تو آج ہم تکبر کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں. تو اب آپ نے مقصد بنا لی کہ نہیں نہیں تکبر کی وجہ سے نہیں ہے, لہٰذا آپ ٹخنے ننگے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب تو پر تکبر کے بغیر ہم کر رہے ہیں نا, تو اصل مقصد تو تکبر کا خاتمہ تھا. تو یہ بات نہیں ہے, ہم خود سے خود مقصد نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, آپ بات سمجھ آ گئی, سب کو یہ واضح ہوئی ہے حدیث, یہ بتائیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیں الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالی کا. اچھا یہ اب آپ مجھے کوئی اور, جی مریم آپ بتائیں گی کہ اور آپ کو اس حدیث سے کیا سبق ملتے ہیں اور یہ حدیث آپ کو کیا بیان کرتی ہے, کہ بہت اہم حدیث ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ایک تو یہ کہ کرٹیسزم نہیں کرنا کسی پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بلیم نہیں کیا, دونوں کی بات پہ خاموش رہ گئے, گروپس بنا لینا اور ایسے فرق کے باتیں کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. ایکولی کوالیفائڈ اگر کوئی مجتہد ہیں اور وہ اجتہاد کوئی چیز کسی بارے میں کرتے ہیں تو پھر سچ تو ایک ہی ہے, اگر وہ اپنی پوری انٹینشن اور اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو بھی ان کو ایک ریوارڈ ملتا ہے, اور اگر صحیح ہے تو دو ریوارڈ ہیں. وہ اس لیے ان کو یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی کسی کے خلاف ان کو بات کرے, جس طرح بس کالر دے دیتے ہیں.
شاباش, ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھی جائے, کچھ کی تو قضا ہو گئی. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو حدیث ہے اور وہ تو قرآن یہ کہتا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے, اور حدیث کی تو کوئی اہمیت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ان کے فرمان کے اوپر اگر نماز بھی کچھ نے چھوڑ دی تھی اور وہاں جا کر پڑھی تو اس کے اندر کوئی ملامت نہیں ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کو امپورٹینس, اس کی کتنی اہمیت ہے یہ نہیں سمجھ آتی. اور پھر بھی کوئی لوگ کہیں کہ وہ نہیں جی حدیث کی کوئی نہیں ہے, صرف قرآن ہی ہے, حدیث کوئی چیز نہیں, تو یہ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی تو تھا کہ وہ انہوں نے وہاں جا کے پڑھی. جی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اختلاف ہوا صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا, لیکن کیا صحابہ کرام نے اس کی بیسس پہ کوئی فرقے بنا لیے؟ کیا صحابہ کرام نے اس کی بیسس کے اوپر ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کینے رکھ لیے؟ یہاں پہ ایک نے ایک جو نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا, لڑنے مرنے تو نہیں کھڑے ہو گئے, اور یہ نہیں کہنے کہ دوسرے کو کھڑے ہو گئے کہ تم کافر ہو کیونکہ تم نے یہ بات کو اس طرح سے نہیں لیا. اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف میں حرج نہیں ہے, مگر اس کے بعد یہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لینا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا خیال سب سے ہی ہو گیا, کوئی تو نہیں رہ گیا اب آئی تھنک. جی فرزانہ آپ بتائیں گی کہ یہ تو ویسے آپ لوگوں نے ابھی پڑھا بھی ہے کہ انصار نے کب مہاجرین کو وہ درخت اور پھل اور سب کچھ, پھل تو نہیں درخت وغیرہ لوٹا دیے تھے یا جو ان کی چیزیں تھیں وہ لوٹا دی تھیں, کس موقع پہ ایسا ہوا تھا؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
ان کے پاس کافی مال ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر اپنے جو بھی ان کے پاس بغاوت وغیرہ انہوں نے کچھ رکھ دیے تھے, کچھ بغاوت لے کے تھے وہ واپس کر دیے تھے.
تو وہ ہدیہ تو واپس لینا ویسے ہی بہت, اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں اس کو بہت زیادہ برا کہا گیا ہے, تو پھر کیسے واپس لے لیے؟
یہ ہدیہ تو نہیں ہے ایکچولی, ان کو فائدہ سب ان کے پاس, کیونکہ وہ ان کے پاس مطلب وہاں سے جب مکہ سے آئے تو کوئی کچھ کوئی چیز نہیں تھی, میں نے اپنی طرف سے شیئر ہی کی کہ ہمارے پاس یہ ہے تو آپ اس سے لے لیں فائدہ لیں, اور یہ کہ جو فائدہ تھا وہ تو واپس نہیں لیا نا, وہ تو لیا انہوں نے, کہا کہ بھی پھل والا آتا تھا وہ ان کو دیا کہ اس کا فائدہ وہ لیتے رہے, جب ان کے پاس مال آ گیا تو وہ چیز ان کو واپس کر دی گئی.
صحیح بالکل. اچھا یہ اب یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا جس کے اندر کہ کوئی عارضی طور پہ کسی کو ویسی چیز دی گئی, اب آپ یہ دیکھیں چیز مطلب اپنے پاس رکھ لیں, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جب تک بھی فائدہ اٹھائیں, اگر واپس ان کو نہیں چاہیے اب اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری سچویشن بدل گئی, اب ہمیں نہیں ضرورت ہے, آپ نے ہمیں گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تھا, اب آپ کی مہربانی ہم نے اپنا گھر بنا لیا, یا جب ہم اس کنٹری کے اندر آئے تھے ہمیں اس وقت گاڑی نہیں تھی ہمارے پاس, آپ نے اپنی گاڑی دی ہوئی تھی کہ چلو جب بھی استعمال کریں آپ جتنا جب بھی جب تک آپ کو ضرورت ہے آپ استعمال کریں, وہ اگر واپس دے دیتے ہیں تو اب یہ نہیں کہنا نہیں 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 یہ تو اب میرے لیے واپس دینا حرام ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا, تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں. بیک بار دینے والا. اچھا جی یہ کچھ ہو گیا میرے کانفرنس کال کے اس کو. اچھا جی صباحت کی لائن آپ کھول دیں. جی کہاں ہے؟ اچھا جی 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 صباحت آپ بتائیں گی کہ جو غیر جو خیر غیر مسلم نہیں اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے, اس کی کیا دلیل ہمیں ملتی ہے حدیث سے؟ کوئی دلیل
ہمیں جی ہمیں اس حدیث سے بھی مل سکتی ہے, حدیث 1161 سے
جی,
کہ یہودی کا جب محاصرہ کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کی طرف ایک تھال بھیجا تھا پھینکا تھا جس میں کہ چربی بھری ہوئی تھی, اور وہ بعد ہی کہتے ہیں کہ وہ مطلب لے لیتے لیکن چونکہ ان کو شرم آئی تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں لی, کہ اصل اصل نہیں تھے, اور اس لیے پتا چلتا ہے کیونکہ اصل اصل کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو اور اصل اصل نے نہیں روکا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے.
شاباش. یعنی یہ حدیث میں نے آپ کو جب جنگ خیبر کا ذکر تھا سیرت میں تو اس وقت سنائی بھی تھی کہ وہ نا امبیرسڈ انہوں نے فیل کیا نا, تو وہ جب بھاگے ایک دم لپ کے ہے نا یہاں پہ بھی فنراؤتو, تو اس وقت فنزاؤتو, تو اس وقت وہ ایک دم لپکے تھے تاکہ اس کو پکڑ لیں اس کو لے لیں, کیونکہ انہوں نے ایک کپ سی اوپر سے پھینکی تھی, اور چربی جو ہے ظاہر ہے اگر کوئی جانور حرام ہے تو اس کی چربی بھی حرام ہے, اور اگر جانور ذبیحہ ہے حلال ہے تو اس کی چربی یوز کر سکتے, تو وہ لینے کے لیے گئے اور پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واچ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, تو وہ اتنے شرمندہ سے ہو گئے جیسے آپ کو ایک دم کوئی ایسے کھاتے ہوئے دیکھ لے یا کوئی ایسی کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھ لے تو آپ ایک دم شرمندہ سے امبیرس سے فیل کرتے ہیں, کیا یہ اس طرح مطلب کسی کے سامنے جیسے آپ کو اچھا مطلب نہیں لگتا کہ کسی نے دیکھ لیا آپ کو اس میں, تو اس لیے وہ شرمندہ سے ہو گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آپ کیوں گئے, یہ تو حرام ہے آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک ہی ہم کریں گے کیونکہ اب سب سے سوال جواب ہو چکے, تو آپ مکسلر پر جائیے, اور میں سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنی تیاری کر کے آیا کریں تاکہ ریویو سیشن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعدوه وبما كانوا يكذبون.